तो आज श्री शिवरात्रि का शुभ दिवस है और आज के दिवस पर हमें शिवजी के बारे में चर्चा करनी चाहिए। ये देखा जाता है विशेषतः भारतवर्ष में कि जो लोग शिवजी की पूजा करते हैं और जो लोग विष्णु की पूजा करते हैं, इन दोनों में हमेशा टक्कर रहता है। ये आज की बात नहीं है, अनादिकाल से ये टक्कर चलते आ रहा है। पद्म पुराण में बताया जाता है, विष्णु भक्त स्मृतो दैव, देवतागण या सुर कौन है जो विष्णु भक्त हैं, और असुर कौन है, असुर तद विपर्ययः, जो विष्णु के भक्त नहीं है वो असुर है। तो सुर और असुर की परिभाषा बहुत ही साधारण तरह से पद्म पुराण ने की है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु या कृष्ण का भक्त है वो सुर है या देवता है, और जो व्यक्ति विष्णु का भक्त नहीं है, चाहे वो और किसी का भक्त क्यों न हो, वो असुर कहलाता है। तो ये कभी कभी थोड़ा कठोर लग सकता है। कोई कहेगा कि अगर हम विष्णु के भक्त नहीं हैं तो हम असुर बन गए, ये तो शास्त्र की बात है, क्योंकि विष्णु के भक्त या कृष्ण के भक्त जो हैं वो एकमात्र ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भोग की प्रवृत्ति को त्याग दिया है, या कम से कम अपने हृदय से सिंसियरली प्रयत्न कर रहे हैं कि भोग की प्रवृत्ति को त्यागने के लिए। लेकिन अन्य जो देवी देवताओं के भक्त हैं उनके हृदय में भोग प्रवृत्ति की अग्नि बहुत प्रज्वलित रूप से जलती है। कामैस्तैस्त हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो इसलिए शैवाइट जो शिव के भक्त हैं और विष्णु के भक्त हैं, इन दोनों में टक्कर है, क्योंकि शिव के भक्त हमेशा वैष्णवों से ईर्ष्या करते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि शास्त्रों में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां शिव के भक्त और वैष्णवों के भक्तों ने और वैष्णवों ने युद्ध किया है। तो वास्तव में सत्य क्या है, सच्चे शिव के उपासक कौन है? वास्तव में शिव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो शिवरात्रि के दिवस हमें यह समझना है अच्छी तरह से कि शिव जी वास्तव में हैं कौन। अलग अलग लोग अलग अलग कहते हैं। कल स्मार्त ब्राह्मण पंचांग के हिसाब से शिवरात्रि मनाई गई थी, तो बाबुलनाथ मंदिर में वहां से आवाज यहां तक सुनाई दे रही थी, बम बम भोले बम बम भोले। और कई लोग चरस गांजा भी पी रहे थे। तो इस प्रकार से बहुत लोग शिव जी की पूजा करने जा रहे थे। लेकिन कितने लोग जानते हैं वास्तव में कि शिव जी वास्तव में हैं कौन? ये भौतिक संसार में भगवान ने बहुत अच्छी सी योजना की, अरेंजमेंट की है ये दुनिया, ये संसार को चलाने के लिए। श्री कृष्ण हमेशा वृंदावन में रहते हैं, अपने धाम में रहते हैं। वो संसार में सिर्फ अपने लीला करने आते हैं, संसार चलाने का काम कृष्ण का नहीं है। अपने आप को विस्तार कर लेते हैं और इनके जो दूत हैं वो जाकर संसार, भौतिक संसार चला लेते हैं। चैतन्य चरितामृत में यह समझाया जाता है कि श्री कृष्ण से बलदेव जी आते हैं, बलराम, हलधर बलराम। बलराम से आते हैं संकर्षण, संकर्षण से आते हैं नारायण, नारायण से आते हैं दूसरे संकर्षण महासंकर्षण, और ये दूसरे संकर्षण से आते हैं महाविष्णु। ये महाविष्णु जो हैं वो कारण सागर में योग निद्रा में लेटकर अपने 50 से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं। ये भौतिक ब्रह्मांड का सृजन महाविष्णु से शुरू होता है और फिर यही महाविष्णु हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। हर एक ब्रह्मांड के अंदर अपने ही पसीने के शय्ये पर लेट जाते हैं और फिर यही गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। ये कमल में ब्रह्मा जी का जन्म होता है और जो कमल के अंदर सारे 14 भवन होते हैं, 14 लोक, और इन लोक में जो भी लोग निवास करते हैं उनके हृदय में यही गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु या परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। और ये संसार को चलाने के लिए गर्भोदकशायी विष्णु ने क्षीरोदकशायी विष्णु को भेज दिया है, क्योंकि ये संसार 3 गुणों से बना हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये दुनिया में हर एक चीज ये 3 गुणों से प्रभावित है और ये 3 गुण डिपार्टमेंट के तरह हैं, जैसे कोई दफ्तर में अलग डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट का कोई अधिष्ठाता होता है, तो उसी प्रकार से ये 3 गुणों के भी अधिष्ठाता हैं। जो रजोगुण के अधिष्ठाता है वो हैं ब्रह्मा जी, सत्वगुण के अधिष्ठाता है विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु, और तमोगुण के अधिष्ठाता हैं शिव जी। तो देखिए, कृष्ण जी हैं गोलोक वृंदावन में अपने धाम में, लेकिन ये भौतिक संसार को चलाने के लिए उन्होंने ये 3 रूप धारण किए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन 3 में आमतौर से लोग समझते हैं कि तीनों एक ही हैं या 3 एक समान हैं, लेकिन विष्णु का स्थान अलग है, ब्रह्मा का स्थान अलग है और शिवजी का स्थान अलग है। ब्रह्मा तो आमतौर से जीवात्मा होते हैं, जो बहुत ही ब्रह्मांड में ज्यादा से ज्यादा पुण्य किया हुआ व्यक्ति है उसको ब्रह्मा जी का पद प्राप्त होता है और वो ब्रह्मांड के सृजन का देखभाल करता है। और शिवजी ना तो जीव तत्व है ना तो विष्णु तत्व है, उनका अलग, उनका श्रेणी अलग ही है। शिव जी जो हैं वो तमोगुण के अधिष्ठाता है और विष्णु वो सत्वगुण। लेकिन विष्णु में और ब्रह्म शिव में अंतर क्या है? अंतर यह है कि ब्रह्मा जी और शिव जी अपने अपने डिपार्टमेंट के कार्यों से थोड़े से प्रभावित हो जाते हैं, जैसे तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव थोड़ा बहुत उन पर पड़ जाता है। इसलिए हालांकि दोनों ब्रह्मा और शिव जी शुद्ध भक्त हैं, फिर भी क्योंकि उन्होंने तमोगुण और रजोगुण का स्पर्श किया है इसलिए वो पूरी तरह से विशुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व, आध्यात्मिक स्तर पर नहीं कहलाते। दूसरी ओर विष्णु जो हैं वो विशुद्ध सत्व यानी पूर्ण आध्यात्मिक स्तर पर हैं, उनका ये सत्वगुण से स्पर्श नहीं होता। सत्वगुण का स्पर्श भी एक भौतिक कलमश है, तमोगुण और रजोगुण का स्पर्श तो दूर की बात है, लेकिन सत्वगुण का स्पर्श भी अगर हमें होता है तो हृदय से प्रभावित हो जाता है। तो विष्णु ये सत्वगुण के भी परे हैं और ब्रह्मा और शिव जी वास्तव में विष्णु के सेवक हैं, विष्णु के कार्य को चला रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को सृजन का कार्य और शिव जी को ब्रह्मांड नाश करने का कार्य, ये सेवा के तौर से ये लोग कर रहे हैं, उनका निहित कर्म है ये, प्रिस्क्राइब ड्यूटी। तो अपने सेवा या ड्यूटी या कर्तव्य के तौर से ब्रह्मा जी और शिव जी अपने अपने निहित कार्य कर रहे हैं, लेकिन विष्णु, उनको कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है, कोई निहित कार्य नहीं है। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, विष्णु को या कृष्ण को ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि करने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। वो स्वराट है, स्वतंत्र है, वो जो चाहे करते हैं और जब कुछ नहीं चाहिए तो नहीं करते हैं। फिर भी शास्त्र में बताया गया है कि विष्णु एक प्रकार के कार्य करते हैं भौतिक ब्रह्मांड में और वो है द्विज धर्म सेतु हो। इसका मतलब है द्विज यानी ब्राह्मण और धर्म की रक्षा करना। लेकिन विष्णु जब ब्राह्मण और धर्म की रक्षा करते हैं तो वो एक तरह के कर्तव्य या कार्य नहीं है, वो उनकी लीला है। इसलिए विष्णु लीलावतार भी माने जाते हैं। आपको पता होगा कि भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं। एक प्रकार का अवतार उसको कहते हैं पुरुष अवतार, जैसे पहले आपको सुनाया महाविष्णु है, फिर गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु, इनको पुरुष अवतार कहते हैं क्योंकि ये भौतिक ब्रह्मांड के सृजन के लिए भगवान ने ये अवतार लिए हैं। और ये तीन ब्रह्मा विष्णु महेश इनको गुण अवतार कहते हैं, क्योंकि ये तीन गुणों के इंचार्ज हैं, अधिष्ठाता हैं, इसलिए उनको गुण अवतार कहते हैं। भगवान के और एक प्रकार के अवतार हैं जिनको कहते हैं लीला अवतार, जैसे मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, वामन देव इत्यादि। ये सब भगवान के अवतार भौतिक संसार में प्रकट होते हैं नाना प्रकार के सुंदर मधुर लीलाएं करने के लिए, जिससे कि उनके भक्तों का मन उनकी ओर आकर्षित हो जाए। तो यह लीला अवतार। और फिर है शक्तिवेश अवतार। शक्तिवेश अवतार वो हैं जिनको भगवान ने कोई विशेष कार्य के लिए अद्भुत शक्ति प्रदान की है। ये शक्तिवेश अवतार जीवात्मा भी हो सकते हैं, विष्णु तत्व भी हो सकते हैं और शिव तत्व भी हो सकते हैं। इसलिए शिव जी को भी शक्तिवेश अवतार भी कहलाया जाता है और वो गुणावतार भी हैं। विष्णु उसी प्रकार से गुणावतार तो है ही, लेकिन लीला अवतार भी कहते हैं, क्योंकि उनका जो भी कार्य है संसार में उनकी लीला है। लेकिन शिव जी का ऐसा नहीं है। शिव जी विष्णु के सेवक हैं, इसलिए वो उन्हीं का कार्य करते हैं। जब ठीक समय आ जाता है तो रुद्र स्वरूप धारण कर लेते हैं और फिर वो सारे सृष्टि का नाश करते हैं। वास्तव में शिव जी ना तो जीवात्मा है ना तो विष्णु तत्व, उनका उनको शिव तत्व कहते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि श्री कृष्ण के 64 विशेष गुण होते हैं और हर जीव को, जीवात्मा को इन 64 गुणों में से केवल 50 गुण और वो भी कण मात्रा में उनके अंदर है। और सबसे जो पुण्यवान जीव है ब्रह्मा, उसके अंदर ये सारे जो 50 गुण हैं अधिक मात्रा में होते हैं। लेकिन शिव जी के 55 गुण हैं, यानी साधारण जीव से या ब्रह्मा जी से भी 5 गुण अधिक हैं। नारायण को 60 गुण हैं और श्री कृष्ण को केवल 64 गुण। तो देखिए शिव जी का स्थान क्या, उनके 55 गुण हैं, ऐसे 5 गुण उनके अंदर अधिक हैं जो कि जीवात्मा के अंदर नहीं दिखाई पड़ते। तो शिव जी देवता हैं लेकिन महादेव हैं। महादेव यानी देवताओं में से सबसे प्रमुख, सबसे शक्तिशाली देवता है वो, कोई साधारण देव नहीं है, इसलिए महादेव कहते हैं। हर हर महादेव आपने सुना होगा। तो ये महादेव हैं और ये विष्णु के स्तर पे तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट प्राय विष्णु के स्तर में है, होते हुए भी नहीं है, इस प्रकार का उनका स्थान है। इसलिए ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं शिव जी के बारे में। हम हर रोज यहाँ मंदिर में ब्रह्म संहिता गाते हैं, कीर्तन करते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं ततः पृथक अस्ति हेतो यह शंभुथाम अपि तथा समुपैति कार्या गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामे। शिव जी और कृष्ण में अंतर कैसा है? वैसा है कि जैसे दही में और दूध में है। दही दूध है भी और नहीं भी। जब दूध में कोई विशेष विकार आ जाता है, क्षीरम यथा दधि विशेष विकार विशेष, जब विशेष कोई विकार आ जाता है तो वो दही बन जाता है। तो दूध दही है लेकिन दूध की तरह हम दही को नहीं ले सकते। उसी प्रकार से शिव जी कृष्ण है भी और नहीं भी। चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये अचिंत भेद अभेद तत्व का सिद्धांत सिखलाया है और ये सिद्धांत को हम कई जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जीवात्मा और कृष्ण, जीव भगवान है भी और नहीं भी, तत्व में भगवान है लेकिन मात्रा में भगवान नहीं है। तो उसी प्रकार से शिव जी भी भगवान है और नहीं भी। तो इस प्रकार से हमें जानना है कि शिव जी और ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और उनकी इच्छा प्रकट होती है। इसलिए कहा जाता है कि भौतिक संसार चलाने के लिए भगवान स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करते हैं। इसका यह मतलब यह नहीं है कि शिव जी और ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के एक समान हो गए। जब हम ये कहते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण किया है, कहने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा और उनकी शक्ति ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु के माध्यम से प्रकट होती है। यह संसार का सृजन, इसका इसको पालन करने के लिए और इसका नाश करने के लिए। तो तो इसलिए यह है शिव जी का स्थान, कोई साधारण स्थान नहीं है। यह भी एक तरह का पोस्ट है, पद है। कई लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होता है कि शिव जी का भी पद है ये। जिस प्रकार ब्रह्मा जी का भी पद है, उसी प्रकार से शिव जी का भी पद है। और उनका एक लोक भी है, गृह धाम, जिसको शिवलोक कहते हैं। और शिवलोक की प्राप्ति भी हो सकती है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब कोई व्यक्ति अपना स्वधर्म का पालन बहुत अच्छी तरह से परफेक्टली करता है तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 100 बार 100 जन्म ऐसे करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। उदाहरण से, कोई अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वर्ण के अगर वो जो कर्तव्य हैं परफेक्टली पालन करता है 100 जन्म तक लगातार, तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होने के पश्चात और भी आगे अगर वो बढ़ जाता है और अधिक योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिवलोक में और भी अधिक योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो ये शिवलोक क्या है, शिव जी का स्थान कौन सा है, ये भी ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में बताते हैं। गोलोक नामनी निज धामनी निजेत तस्य हरि, व्हाट इज दैट, देवी हरि महेश धाम धामसु तेषु तेषु ते प्रभाव निचया विताश्च येन गोविंदमादि पुरुषं तम अहम् भजामि। इसका मतलब है भगवान ब्रह्मा जी अपने लोक में बैठे हुए हैं, ब्रह्म लोक में, और वो गोलोक वृंदावन की ओर देख रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि गोलोक वृंदावन बहुत ऊंचा है। और वो कहते हैं कि देवी महेश हरि धाम सुतेषु तेषु, पहला है देवी धाम, फिर है महेश धाम, फिर है हरि धाम, और हरि धाम के ऊपर है गोलोक धाम। तो देवी धाम का मतलब क्या है, देवी धाम का मतलब है वो धाम या वो जगत जो कि देवी या दुर्गा के अध्यक्षता में चल रहा है। और वो कौन सा है, हमारा भौतिक ब्रह्मांड, दुर्गा, दुर्गा देवी, और ये भौतिक संसार है, एक दुर्ग, एक फोर्ट। और दुर्गा देवी भौतिक संसार में जो भी लोग हैं उनके त्रिशूल से चला रही हैं। वो त्रिशूल क्या है, त्रिविध ताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश। तो ये भौतिक संसार को देवी धाम बताया गया है, भौतिक संसार है। और इसके परे है महेश धाम, लेकिन महेश धाम एक तटस्थ धाम है, मार्जिनल धाम, यानी ना तो भगवान के धाम में है ना तो भौतिक संसार में है, ना तो भौतिक है ना तो आध्यात्मिक है, उसका विशेष स्थान है। जिस प्रकार से शिव जी ना तो जीव तत्व है ना तो विष्णु तत्व है, उसी प्रकार से शिव जी का लोक भी ना तो भौतिक संसार में है ना ही आध्यात्मिक संसार में है। और शिव जी के परे जब आ जाते हैं तो हरिधाम, हरिधाम का मतलब है वैकुंठ लोक। लेकिन वैकुंठ लोकों में से भी प्रमुख है गोलोक धाम, जहां साक्षात श्री कृष्ण स्वयं रहते हैं, निवास करते हैं और अपनी मधुर लीलाएं रचाते हैं वहां पे। तो यह क्रम से जीव प्रगति कर सकता है इस प्रकार से। और जो पुण्यात्मा है वो ऐसे ब्रह्मलोक शिवलोक होकर भगवान के धाम जा सकते हैं, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो डायरेक्ट जाना चाहते हैं भगवान के धाम में, तो वो ब्रह्मलोक शिवलोक आदि के मार्ग से नहीं जाना चाहते, वो सीधा गोलोक वृंदावन जाते हैं। लेकिन अगर किसी शुद्ध भक्त के अंदर ऐसी कोई इच्छा भी हो कि मैं जाते जाते थोड़ा साइट सीइंग करके जाऊं, तो वो भी फैसिलिटी सुविधा भगवान देते हैं, कहते हैं ठीक है ये गाड़ी में बैठो, ये स्लो गाड़ी है, पैसेंजर गाड़ी है, हर एक जगह रुकते हुए जाएगी, लेकिन वहां पहुंचना निश्चित है। बाकी जो हमारी गाड़ियां हैं वो गाड़ियां जैसे आप बोरीवली नेशनल पार्क में देखेंगे, बच्चों की गाड़ी है ना, उसका रूट कैसा होता है, गोल 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 फिरते रहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम जो भौतिक संसार में बद्ध व्यक्ति जीव हैं, उनका क्या है, उनकी स्थिति क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, कभी कभी स्वर्ग लोक में, कभी पाताल लोक में, कभी पृथ्वी लोक में, इस प्रकार से वो भ्रमण कर रहे हैं। तो शिवलोक की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन शुद्ध भक्त को ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है। तो शिव जी वहां निवास करते हैं और अपना कार्य करते हैं, हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, और जब समय आता है सृष्टि का नाश करने के लिए तो वो तैयार हो जाते हैं। तो सृष्टि का नाश होता कैसे है, शिव जी के तांडव नृत्य से, वो अपने डमरू बजाते हैं और तांडव नृत्य करते हैं। ये सृष्टि का जो काम है ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। शास्त्रों में इतना गहरे तरह से वर्णन किया हुआ है इसके बारे में, इसको समझना काफी मुश्किल है। लेकिन संक्षेप में इसको समझाने का प्रयास करेंगे। वास्तव में जैसे पहले बताया, शिव जी और ब्रह्मा जी भी यंत्र हैं, अपने आप से वो कुछ नहीं कर सकते। जब श्री कृष्ण या उनके अवतार उनके माध्यम से कुछ कार्य करेंगे तो वो कर पाएंगे। उसी प्रकार से जब सृष्टि का नाश करने का समय आ जाता है तो शिव जी भी अपने शक्ति से अपनी योग्यता से सृष्टि का नाश नहीं कर पाते, तो कौन करवाता उनके माध्यम से? वो है अनंत। भगवान का एक अवतार है अनंत देव। आपने अनंत देव का नाम अवश्य सुना होगा। कैसा रूप है उनका? एक सांप का रूप है, शेषनाग, अनंत देव या अनंत शेष। वो पाताल लोक के 240,000 मील नीचे निवास करते हैं। आपको मालूम है कि ये भौतिक संसार में 14 प्रकार के लोक होते हैं। ऊपर जन ब्रह्मलोक से लेकर महालोक, जनलोक, तपलोक और फिर स्वर्गलोक, फिर पृथ्वीलोक, पाताल लोक इत्यादि। तो पाताल लोक के भी नीचे, बहुत नीचे, ये भौतिक ब्रह्मांड के नीचे, वहां पे अनंत शेष निवास करते हैं। और उनके हजारों हजारों फण हैं और इन फणों में वो सारे भौतिक ब्रह्मांड को धारण करते हैं। एक फण में एक ब्रह्मांड। और ये चैतन्य चरितामृत में और भागवत में भी वर्णन है कि हर एक ब्रह्मांड उनके एक फण में एक छोटा सा सफेद राई का बीज के समान लगता है। अभी देखिए ब्रह्मांड, हर एक ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना वजन होगा हर एक ब्रह्मांड का। लेकिन अनंत शेष अपने एक फण में एक ब्रह्मांड धारण करते हैं। उनके अनंत कोटि उनके फण हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करने के लिए। और ऐसे वो आराम से धारण किए हुए हैं। ग्रीक मैथोलॉजी में एटलस नाम का एक देवता है। वो सोचते हैं कि ये भगवान है और ये भगवान ने सारे पृथ्वी को, ब्रह्मांड की बात दूर है लेकिन सारे पृथ्वी को धारण किया हुआ है। तो ग्रीक लोगों ने सोचा था कि ये पृथ्वी को धारण करना कोई आसान काम नहीं होगा, इतना वजनदार है, इतना भारी है, तो अवश्य आदमी को बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर होना चाहिए। तो उन्होंने एटलस नाम के व्यक्ति, उनको देवता है, उनका ऐसा एक चित्र बनाया है कि जैसे उसने पृथ्वी को अपने कंधों पर धारण किया है और बोझ के मारे बहुत उसके कंधे झुक गए हैं और बेचारा पसीने पसीने हो गया है। लेकिन जब अनंत देव सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने फणों पर धारण करते हैं तो बड़े आसानी से धारण करते हैं, जैसे कि एक बड़े से सांप एक छोटा सा राई का दाना अपने फण पर धारण कर रहा है। उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होती। तो ये अनंत देव का और एक नाम है संकर्षण। और ये संकर्षण है जो वास्तव में तमोगुण के अधिष्ठाता है। वास्तव में अभी आप कहेंगे कि हमने पहले कहा कि शिवजी अधिष्ठाता है, अभी आप कह रहे कि संकर्षण है, तो वास्तव में कौन है? जैसे कभी कभी डिपार्टमेंट में डेप्यूटी मैनेजर होता है, मैनेजर होता है, दोनों इंचार्ज में है, लेकिन डेप्यूटी मैनेजर को कहां से शक्ति मिलती है? मैनेजर से। तो उसी प्रकार संकर्षण मैनेजर है और शिवजी डेप्यूटी मैनेजर है। और संकर्षण या अनंत देव शिवजी को सब ज्ञान दे देते हैं। वास्तव में संकर्षण ये शिवजी के हृदय में निवास करते हैं। और जब सृष्टि को नाश करने का समय आता है तो संकर्षण एक लीला करते हैं। क्या लीला करते हैं? थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, थोड़ा सा क्रोध आ जाता है और भुए अपने ऐसे थोड़े करीब कर लेते हैं और उस समय उनके आंखों के बीच में से 3 नेत्रों वाले त्रिशूल धारण करते हुए रुद्र उत्पन्न होते हैं। रुद्रदेव है, ये रुद्रदेव जो है ये भी शिवजी के अवतार हैं। इस प्रकार से 11 रुद्र उत्पन्न होते हैं और ये 11 रुद्र कुल मिलाकर सारे भौतिक ब्रह्मांड में हंगामा मचा देते हैं, सब नाश कर देते हैं। और शिवजी को नाश करने की शक्ति और नाश करने का ज्ञान अनंत देव या संकर्षण अपने कपाल से देते हैं शिवजी के हृदय के माध्यम से। और इसलिए शिवजी ये भौतिक ब्रह्मांड का नाश कर पाते हैं, नहीं तो शिवजी नहीं कर पाते। और क्योंकि संकर्षण या अनंत देव ये तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, इसलिए वो अहंकार के भी अधिष्ठाता है। अभी हमें बद्ध जीव को ये भौतिक ब्रह्मांड में क्या बांध कर रख रहा है? क्या चीज है वो? हमारा अहंकार, मिथ्या अहंकार, जिसकी वजह से जीव आत्मा सोचता है कि मैं ये शरीर हूं। तो ये अहंकार के अधिष्ठाता है संकर्षण। तो जो भी व्यक्ति ये मिथ्या अहंकार के प्रभाव में है, हमें समझना है कि वास्तव में वो संकर्षण के कहने पे संकर्षण के हाथ में कठपुतली है और संकर्षण के एजेंट हैं शिवजी। तो इस प्रकार से संकर्षण अपना कार्य कराते हैं। तो हालांकि संकर्षण और शिवजी दोनों तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, फिर भी उनका स्पर्श नहीं है इससे संकर्षण का, वो हमेशा दिव्य स्तर में रहते हैं। तो इस प्रकार से सारे भौतिक ब्रह्मांड का नाश होता है। तो शिवजी का उत्पन्न होने की अलग अनेक लीलाएं हैं। संकर्षण से के कपाल से जो आता है ये एक लीला है। श्रीमद् भागवत में और एक लीला का भी वर्णन है। एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी को जब आदेश मिला भगवान से कि आपको भी सृष्टि उत्पन्न करनी है, प्रजा उत्पन्न करनी है, तो ब्रह्मा जी के शरीर से, उनके मन से इत्यादि नाना प्रकार के जीव उत्पन्न होने लगे। चार कुमार आए जो शिशु साधु हैं, शिशु के रूप में साधु हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश दिया, आज्ञा दिया कि आपको अभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और प्रजा उत्पन्न करना चाहिए। तो चार कुमार जो हैं वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उनको विवाह से कुछ लेना देना नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप तो हमारे गुरुदेव हैं, आप हमारे पिता हैं, लेकिन ये आपका एक आज्ञा का पालन हम नहीं कर पाएंगे, हमें अफसोस है। तो ब्रह्मा जी ने जब ये सुना कि मेरे ही पुत्र मेरे आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो बड़े क्रोधित हुए। जैसे आमतौर से पिता कुछ अभी यहां भी इस संसार में देखते हैं, जब कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है, अपने पिता से कहता है कि मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं, तो उसके भी आंख नजदीक आ जाते हैं, आंख लाल हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की तरह उनके कपाल से शिवजी नहीं उत्पन्न होते, सिर्फ इतना अंतर है। तो ब्रह्मा जी जब क्रोधित हो गए तो उनके कपाल से शिवजी आ गए। ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आया कि यह क्या हो गया, देखते रह गए कि एक छोटा सा बालक आ गया। और क्योंकि क्रोध जो है ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव दोनों है, इसलिए लाल और पीला रंग दोनों का जो मिश्रण है वो ये बाल रुद्र का स्वरूप ऐसे इस रंग से उत्पन्न हुआ और रोते हुए उत्पन्न हुआ, रो रहा था। जैसे कि साधारण बालक भी जब जन्म लेता है तो रोते हुए जन्म लेता है, तो उसी प्रकार से रुद्रदेव भी रोते हुए जन्म ले रहे थे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे क्यों रो रहे हो भाई, क्या हो गया? तो शिव जी ने कहा, मुझे नाम दो, मेरा नाम क्या है, और मुझे रहने के लिए स्थान दे दो, मुझे कुछ कार्य चाहिए। तो ब्रह्मा जी बड़े दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने उनको 11 स्थान दे दिए, जैसे कि हृदय, जैसे इंद्रियां, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि इत्यादि, और उनको 11 नाम दे दिए, 11 रुद्र बन गए, और कहा आप रहो वहां और आप प्रजा उत्पन्न करो। तो फिर रुद्रदेव ने प्रजा उत्पन्न करना आरंभ किया और ऐसे भयंकर संतान उत्पन्न किए कि सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, पूरा हंगामा मच गया, और ये सारे जो प्रजा है वो ब्रह्मा जी को भी खत्म करने को आ गई। तो ब्रह्मा जी दौड़ते हुए शिव जी के पास आए, कहा, हाथ जोड़कर कहा कि अब ये बंद कर दो कृपया, अब ये समय नहीं है। हाँ, जो कल्प का अंत होता है, मेरे दिन का अंत होता है, उस समय ये ब्रह्मांड का नाश होता है, अभी नहीं, तो अभी इतना क्रोध न करो। ब्रह्मा जी का जो दिवस का अंत है उसको कहते हैं कोपकाल, और एक नाम है कोपकाल। कोप का मतलब है क्रोध, काल का मतलब है समय। तो ब्रह्मा जी का जब दिवस का अंत होता है तो वो क्रोध का समय है, क्योंकि जैसे पहले बताया संकर्षण के माध्यम से शिव जी क्रोध करते हैं और सब कुछ नाश हो जाता है। इस संसार में भी हम देखते हैं, अगर कुछ नाश करना है, जैसे कभी कभी यहाँ रायट्स हो जाते हैं, तो लोग क्रोध से सब कुछ तोड़ने लगते हैं, गाड़ी जलाते हैं वगैरह। कोई आसानी से हंसते हंसी मजाक में ऐसे आराम से नहीं करते। तो इसलिए कुछ नाश करना है तो क्रोध आवश्यक होता है। तो कोपकाल, तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखो ये कोपकाल का समय भी नहीं है, तो अभी कोप न करो, अभी क्रोध न करो, अभी तुम केवल अभी वन में जाओ, तपस्या करो, तुम्हारा काम है, और जब समय आ जाएगा ठीक तो तुम्हें बुला लेंगे। जैसे अभी यहां देखते हैं कि कई लोग पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे होते हैं, उनके कई विशेष आदमी होते हैं, जब खास हड़ताल करना होता है या कुछ तोड़ना मोड़ना होता है या कोई ऐसे राइड्स करने होते हैं तो उनको बुला लेते हैं। तब तक कहते हैं अभी आराम करो, आप जब जरूरत होगी तो आपको बुला लेंगे। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा जब सृष्टि का नाश करने का समय आ जाएगा तो आपको हम बुला लेंगे, तो अभी कृपया आप जाओ और वन में जाकर आप तप करो। तो शिव जी ने फिर अपने पिता ब्रह्मा जी का परिक्रमा की और फिर वो भी वन में चले गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिव जी का स्थान बड़ा विचित्र है, ना तो यहां ना तो वहां, लेकिन शिव जी भी स्वीकार करते हैं कि विष्णु उनके प्रभु हैं। शिव जी कभी ये नहीं कहते कि मैं प्रभु हूं और विष्णु मेरा दास है। जो शिव जी के जो भक्त ऐसे कहते हैं कि हमारे जो प्रभु शिव जी हैं और विष्णु उनके दास हैं, तो इस प्रकार। लेकिन शिव जी स्वयं क्या कहते हैं? शिव जी स्वयं वो घोषणा करते हैं कि वास्तव में मुक्ति प्रदाता सर्वेशां विष्णु न एव संशयः, कि मुक्ति प्रदाता, मुक्ति देने वाले व्यक्ति कौन है? विष्णु है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक की बात नहीं है इसमें, केवल विष्णु, मैं भी नहीं दे सकता। दुर्वास मुनि जब अम्बरीश मुनि अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध करते हैं और फिर भगवान का सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता है और दुर्वास मुनि जगह जगह भागते हैं वो सुदर्शन चक्र से राहत पाने के लिए, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं रॉन्ग नंबर, आगे जाते हैं शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं कि देखो वास्तव में ब्रह्मा जी, मैं और अनेक देवता जो हैं, हम ये सारे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं और हम ये भ्रम में हैं कि वास्तव में हम कुछ महान व्यक्ति हैं, लेकिन वास्तव में सत्य क्या है? सत्य क्या है कि श्री हरि हैं, उनकी इच्छा करने मात्र से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड और उनमें जो भी अनंत कोटि जो जीवात्मा या निवास करते हैं वो प्रकट होते हैं और उनका नाश भी होता है। ये है हमारे प्रभु श्री हरि, और ये प्रभु इतने बड़े हैं, इतने महान हैं कि इनकी माया शक्ति को भी हम समझ नहीं पाए हैं। तो इसलिए आप नारायण के पास जाना, मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से शिव जी ने भी घोषणा की है साफ साफ कि श्री कृष्ण या विष्णु या नारायण मेरे प्रभु हैं। शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण देखने में आते हैं जहां शिव जी ने कुछ कार्य किए हों और भगवान ने स्वयं आकर उनका मदद किया हो। जैसे श्रीमद् भागवत में मया दानव असुर नाम का वर्णन है। एक बार की बात है कि असुरों के बीच में और देवताओं के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ और युद्ध में देवतागण हार गए। जब देवतागण हारने लग रहे थे तो शिवजी के पास गए और शिवजी आए मैदान में तो सब असुरों को इतर तितर कर दिया और उस समय असुर जाकर असुरों ने मया दानव नाम के असुर का शरण लिया। ये मया दानव नाम का असुर जो है बहुत ही शक्तिशाली था, योग अभ्यास में बहुत ही आगे बढ़ चुका था और ऐसी सिद्धियां उसके पास थी जैसे वैसी सिद्धियां किसी और के पास नहीं थी। तो तुरंत मया दानव ने क्या किया, ऐसे तीन प्रकार के शहर बनाए आकाश में और सारे असुरों को उनमें रख दिया और उन्होंने ये तीनों जो शहर हैं उनको ओझल इनविजिबल ना, ओझल कर दिया, अदृश्य कर दिया और फिर इनमें से सवार होकर असुर लोग वो हमला कर रहे थे देवताओं के ऊपर। तो फिर शिवजी ने अपने अस्त्र छोड़े और इनका नाश कर दिया। जब नाश कर दिए तो सारे जो असुर हैं वो गिरकर नीचे गिर गए। तो मया दानव ने क्या किया और एक जादू कर दिया। मया दानव ने एक ऐसा कुआं बनाया जिसमें अमृत था तो सारे असुरों को उन्होंने अमृत में डाल दिया और अमृत में स्नान करने के बाद में असुरों का शरीर वो बिल्कुल वज्र के समान शक्तिशाली और मजबूत हो गया और बिजली की तरह वो अमृत के कुएं से उठे और फिर से युद्ध करने लगे और सारे देवताओं का नाश करने लगे। तो इस समय शिवजी भी बड़े उदास हो गए कि अब क्या किया जाए। तो हम देख सकते हैं कि शिवजी भी सबसे शक्तिशाली नहीं है, ऐसे भी कई परिस्थितियां होती हैं जब शिवजी भी कुछ कर नहीं पाते। तो ये जब देखा विष्णु ने तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए। तो विष्णु ने एक गाय का रूप लिया और ब्रह्मा जी ने एक गाय के बछड़े का रूप धारण किया और दोनों ने ये अमृत के कुएं के पास जाकर वो सारा अमृत पी डाला और असुर देखते रह गए। अभी आप पूछेंगे कि देखते रह गए उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं, क्योंकि भगवान की माया शक्ति इतनी उनके ऊपर इसका प्रभाव इतना था कि वो देख रहे थे कि ये लोग अमृत पी रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे थे और माया दानव को भी समझ गया, वो भी उसको भी उनको भी समझ में आ गया कि ये अभी क्या हो रहा है, लेकिन वो भी सोचने लगे कि ये भी भगवान श्री हरि की माया शक्ति है। और इस प्रकार से अमृत सारा खत्म करके फिर शिव जी को उन्होंने अस्त्र दिए, और इन अस्त्र को लेकर फिर शिव जी ने सारे असुरों को खत्म कर दिया। तो ये तीन शहर थे उनको खत्म कर दिया, इसलिए शिव जी का नाम है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी, पुर यानी शहर, पुरी द्वारकापुरी जगन्नाथपुरी, पुर त्रिपुर, तीन पुरों को जब नाश किया उन्होंने इसलिए उनका और एक नाम है त्रिपुरारी। तो इसलिए शिव जी की लोग गुणगान करते हैं त्रिपुरारी के नाम से, लेकिन उनको शक्ति आई कहां से? विष्णु ने दी। कभी कभी शिव जी के भक्त हैं वो असुर होते हैं, आमतौर से बहुत बड़े राक्षस भी होते हैं, और वो जाकर कृष्ण को ललकारते हैं या विष्णु को ललकारते हैं युद्ध में, जिस तरह से हिरण्यकशिपु वो शिव जी के भक्त थे, रावण शिव जी के भक्त थे, और उन्होंने रामचंद्र प्रभु के प्रति युद्ध किया, लेकिन उस समय शिव जी को समझ में आया, शिव जी ने उस समय रावण की मदद नहीं की, उन्होंने देखा कि अभी हमारे प्रभु रामचंद्र आकर हमारे भक्त का नाश करेंगे, कुछ नहीं किया। कभी कभी लेकिन शिव जी हाथ उठाते हैं और बहुत पछताते हैं बाद में। एक बार ऐसे हुआ कि काशीराज नाम का एक राजा था, 5000 साल पहले, काशी का राजा काशीराज, और काशीराज भी शिव जी का भक्त था, तो शिव जी को प्रसन्न करके बड़ा शक्तिशाली हो गया, और उसने सोचा कि अब मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूं कि मैं द्वारका में जाकर श्री कृष्ण को भी मैं हरा सकता हूं। तो जब सेना लेकर कृष्ण से युद्ध करने गया तो श्री कृष्ण ने उसको उसकी अच्छी तरह से, बहुत ही बुरी तरह से उसको पराजित कर दिया, और उस समय शिव जी ने जो पशुपत अस्त्र दिए थे वो भी अस्त्र कोई काम नहीं कर पाए, और उस समय शिव जी ने पछताया और श्री कृष्ण से माफी मांगी, क्षमा चाहा, और श्री कृष्ण ने फिर क्षमा कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिव जी भी कभी कभी बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं इस प्रकार से। और एक लीला है श्रीमद् भागवत में जिससे हम समझ सकते हैं कि वास्तव में शिव जी का स्थान और विष्णु का स्थान दोनों की तुलना कैसे हम कर सकते हैं। एक बार असुर और देवता दोनों अमृत का पान करना चाहते थे, और अमृत का पान करने के लिए उनको समुद्र का मंथन करना था, तो इसके लिए भी भगवान ने उनको सुझाव दिया और मदद किया, और उन्होंने कहा कि दूध के सागर में जाकर आप समुद्र मंथन करो, और मंथन के लिए जो आपको जो डंडा चाहिए वो मंदर पर्वत होगा, मंदर पर्वत जो है वो सोने का बनाया हुआ है, तो ये मंदर पर्वत आप ले आओ और फिर इसको आप इसका मंथन आप कर लो, फिर इसमें से अमृत निकलेगा और अमृत का पान करो, आप अमर बन जाओगे। तो लंबी कथा लंबी है, तो खैर अमृत का पान हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण फिर भी अवतार लेते हैं, कूर्म अवतार लेते हैं, धन्वंतरी अवतार लेते हैं, अजित अवतार लेते हैं, अनेक अवतार हैं ये लीला में, और अंत में देवताओं को वो अमृत दे देते हैं। पर देवताओं को अमृत देने के लिए उनको असुरों से अमृत चुरा लेना पड़ता है, और ये अमृत चुराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा अद्भुत अवतार लिया जिसका वर्णन शायद जिसका शायद एक ही बार ऐसे भगवान ने अवतार लिया होगा, वो है मोहिनी अवतार। कभी भगवान जब अवतार लेते हैं तो स्त्री रूप में अवतार नहीं लेते, तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि जब अगर वो बताना चाहते हैं कि सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है तो वो ऐसे अवतार धारण कर लेते हैं। श्री कृष्ण स्वयं सबसे सुंदर व्यक्ति है, और उनके जो भी अवतार है नारायण विष्णु वो भी अति सुंदर है, लेकिन अगर कोई कहे कि ये तो पुरुष है, मुझे स्त्री रूप में कोई सुंदर व्यक्ति सुंदर रूप देखना है, तो श्री कृष्ण का ठीक है, ये भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो स्त्री रूप में ऐसा सुंदर रूप उन्होंने प्रकट किया कि सारे असुरों का मन प्रभावित हो गया, वो बिल्कुल मोहित हो गए, इसलिए उनका नाम मोहिनी, जो मोहित कर देवे सबको। और फिर उन्होंने सारे असुरों से ये अमृत चुरा लिया और देवताओं को पिला दिया और फिर वो चली गई। जब शिव जी ने यह सुना कि भगवान ने ऐसा एक अद्भुत अवतार लिया है, तो शिव जी ने सोचा कि मुझे भी ये अवतार का दर्शन करना है, तो अब देवी को लेकर यानी दुर्गा देवी को लेकर वो भगवान के धाम में गए और प्रार्थना किया भगवान से कि प्रभु मैंने सुना है कि आपने ये ऐसे अद्भुत अवतार अभी आपने लिया है, तो मुझे भी देखना है। तो भगवान गंभीर थे, फिर भी हंसने लगे और सोचने लगे अपने मन में कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा ऐसे है तो मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन होशियार रहना, खबरदार, बाद में जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं मेरा मोहिनी अवतार अवश्य दिखा लूंगा, लेकिन बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी। तो शिव जी तैयार हो गए, बहुत इच्छुक हो गए देखने के लिए, और फिर भगवान ने ये मोहिनी रूप धारण किया। अभी देखिए शिव जी का स्थान क्या है। शिव जी को धीर पुरुष माना जाता है, ऐसे धीर व्यक्ति। धीर व्यक्ति कौन होता है? वो होता है जिसने कि अपने सारे इंद्रियों पर काबू कर लिया हो। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं ना, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरपस्थ वेगम। तो जिसने ये छह वेगों को पूरी तरह से वश में कर लिया है, इसे कहते हैं धीर। एतान वेगान यो विषहेत धीर। धीर पुरुष वो है जिसने सारे इंद्रियों को बिल्कुल अच्छी तरह से काबू में कर लिया है। और शिव जी धीर पुरुषों में से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। स्वयं कामदेव जब एक बार श्री कृष्ण श्री शिव जी के तपस्या को भंग करने आए, तो शिव जी ने क्या किया, उनका तीसरा आंख खोल दिया, उसमें से अग्नि आई और कामदेव का शरीर अग्नि से भस्म हो गया। तो धीर पुरुष हैं, लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति का सामना किया तो फिर क्या हुआ। देखिए शिव जी की पत्नी कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी कौन है? स्वयं माया देवी। हम किसके जाल में फंसे हुए हैं? दुर्गा देवी के जाल में। दुर्गा देवी या माया देवी, इनकी शक्ति के कारण हम सब माया में हैं। लेकिन शिव जी उनके स्वामी हैं, उनके पति हैं, तो वो कैसे महामाया में पड़ सकते हैं? नहीं पड़ सकते कभी भी। दुर्गा देवी स्वयं उनकी सेवा करती हैं। तो भगवान सोच रहे थे कि शिव जी को तो मैं महामाया में तो के प्रभाव में नहीं डाल सकता, इसलिए शिव जी को अगर मुझे मोहित करना है तो केवल मेरी अंतरंग शक्ति ये कार्य कर सकती है। तो फिर शिव जी ने अपना मोहिनी अवतार प्रकट किया, और जब शिव जी ने यह सुंदर रूप देख लिया तो सारे जो उनको इंद्रियों का संयम वो खो बैठे, और मोहिनी अवतार के पीछे वो दौड़ने लगे एक साधारण व्यक्ति की तरह। और जब वो वीर खो बैठे तब उनको समझ में आया कि वास्तव में मैं भगवान की अंतरंग शक्ति से प्रभावित हो गया हूं। और उस समय वो दुखी नहीं हुए, वो सोचने लगे कि कितने महान है मेरे प्रभु, कितने महान है, शक्तिशाली है मेरे भगवान, कि उनकी ऐसी शक्ति है कि मुझ जैसे धीर पुरुष को उन्होंने इस तरह से कठपुतली के समान जो है उन्होंने मुझे नचा लिया है। फिर शिव जी ने आकर भगवान से प्रार्थना की और कहा कि मैंने बहुत हो गया, अब मैंने आपकी माया शक्ति देख ली है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि शिव जी वास्तव में महान है, लेकिन इनकी तुलना हम कभी भी भगवान श्री कृष्ण या विष्णु से कभी भी नहीं कर सकते हैं। वास्तव में शिव जी ऐसे कैसे हैं कि वो जाकर भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं, प्राइवेट ऑडियंस लेते हैं, क्योंकि वो महान भक्त हैं। शिव जी का ये एक रूप ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। वो जानते हैं कि ये सृष्टि का नाश करते हैं वगैरह, लेकिन ये बात कि वो वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध भक्तों में से सबसे महान है, ये लोग नहीं जानते हैं। यमराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं यमदूतों से कि 12 अधिकारी हैं भक्ति में, अथॉरिटीज, और उनमें से शिव जी भी एक हैं। स्वयंभू नारद शंभु तीसरे नंबर पे हैं, शंभु या शिव जी। भक्ति के अधिकारी, अथॉरिटी, जो भगवान को और भगवान की भक्ति को अच्छी तरह से पहचानते हैं, बहुत ही एक ऊंचे भक्त हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में बताया जाता है, निम्न गानाम यथा गंगा, जो सारे नदियां हैं इनमें से सबसे प्रमुख कौन सा है, कौन सी नदी है? गंगा जी। देवानाम अच्युतो तथा, देवताओं में से अच्युत या केशव या श्री कृष्ण सबसे प्रमुख हैं। और वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में से सबसे प्रमुख हैं शिवजी। तो यह है शिवजी का स्थान, वो महाजन हैं और वैष्णवों में से सबसे परे हैं। हम देखते हैं कई बार भागवत में भी शिवजी भक्त होने के नाते दूसरे भक्तों के गुणगान करते रहते हैं, चित्रकेतु महाराज की कथा में भी हम ये बात देखते हैं। चित्रकेतु महाराज वो भी भगवान के शुद्ध भक्त थे और उनको स्वयं संकर्षण भगवान अनंत देव का दर्शन हुआ था और उसके पश्चात वो अपने विमान में घूम रहे थे और जब घूम रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा उन्होंने कि शिव जी बैठे हैं अपने स्थान में, अपने आसन धारण किए हुए, अपने गोदी में माता पार्वती को लिए हुए और उपदेश कर रहे हैं। किनको कर रहे हैं? सारे जो वैरागी हैं, संत महात्मा पुरुष बैठे हैं, सबसे ऊंचे से ऊंचे वैरागी पुरुष बैठे हैं, गंधर्व, किन्नर इत्यादि सारे ऊंचे लोक के निवासी भी बैठे हैं और उनको वो उपदेश दे रहे हैं। देखिए कितनी अद्भुत बात है कि वो व्यक्ति वैराग्य के ऊपर चर्चा कर रहा है और साथ में अपनी पत्नी को लेकर बैठा है। तो ये दृश्य को देखकर चित्रकेतु हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी कोई बुरी हंसी नहीं थी। मतलब वो भगवान को उन्होंने नीच दृष्टि से, शिव जी को उन्होंने नीच दृष्टि से नहीं देखा। वो सोच रहे थे कि केवल शिव जी ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो ऐसा कार्य कर सकते हैं। इनके अंदर इतना वैराग्य है, ये इतने महान है कि वो अपने पत्नी को गोदी में बैठे हुए भी वो वैराग्य के ऊपर प्रवचन दे सकते हैं और सारे जो उनके सामने महात्मा पुरुष बैठे हैं वो इस बात को कुछ अद्भुत या विचित्र नहीं समझते हैं। इसके बारे में वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। वो समझते हैं कि शिव जी का स्थान क्या है। तो ये समझकर चित्रकेतु महाराज हंस पड़े और उन्होंने निंदा की हंसी में। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि चित्रकेतु महाराज और शिवजी का संबंध अच्छा संबंध था, क्योंकि शिवजी भी भक्त हैं, चित्रकेतु महाराज भी भक्त हैं। तो चित्रकेतु महाराज के हृदय में ये और एक भी एक विचार था कि शिवजी तो महावैष्णव हैं, लेकिन अगर ये ऐसा उदाहरण दिखाएंगे तो जनसाधारण भी ऐसे उदाहरण वो अपने जीवन में भी करने लगेंगे। क्योंकि यद यद आचरति शश तत्त एवेतरोजना, जो महान लोग करते हैं वैसा ही उदाहरण, उसी उदाहरण के हिसाब से जनसाधारण भी कार्य करेगी। तो ये समझाने के लिए भी उन्होंने निंदा की। तो शिव जी ने समझ लिया कि चित्रकेतु महाराज के हृदय में क्या विचार है। सारे उपस्थित भक्तों ने, संत महात्माओं ने समझ लिया, लेकिन माता पार्वती ने नहीं समझा, वो भी भगवान की इच्छा से। और तुरंत वो बहुत क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर उन्होंने कहा चित्रकेतु महाराज से कि कौन है ये, अचानक आ गया है, अपने आप को बड़ा भक्त समझ रहा है, कौन है ये जो कि अभी सारे देवी देवताओं को, शिवजी को भी दंड देने आया है, ऐसा व्यक्ति, इसलिए ऐसे व्यक्ति को शाप मिलना चाहिए। तो मैं शाप देता हूं तुम्हें कि तुम्हें अभी असुर का शरीर प्राप्त होगा। तो ये जब सुना तो चित्रकेतु महाराज ने क्या किया, क्योंकि वो महान वैष्णव थे, तुरंत अपने विमान से उतरे और माता पार्वती को प्रणाम किया कि हे माते, आप, मैं आपको प्रणाम करता हूं और वास्तव में ना तो इसमें आपका कसूर है ना तो मेरा कसूर है, जो भी कुछ होता है ये काल और कर्म के अनुसार भगवान की अध्यक्षता में होता है, तो इसलिए मैं आपका श्राप बहुत ही नम्रता से स्वीकार करता हूं। तो ये जब सुना तो सारे जो सभा वहां उपस्थित थी सब लोग आश्चर्यचकित रह गए और शिव जी अपने आप ही हंस रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि चित्रकेतु महाराज क्या है। लेकिन पार्वती माता फिर बहुत शर्मिंदा हो गई कि मैंने गलत तरह से श्राप दे दिया, और उस समय शिवजी चित्रकेतु महाराज की गुणगान करने लगे। वो कहने लगे, नारायण परा सर्वे न कुटश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेश अपितुल्यार्थ दर्शिनः। वे कहने लगे कि देखो, ये नारायण के नारायण परा सर्वे, नारायण परा यानी जो भगवान के नारायण के भक्त हैं, इतने महान है, न कुटश्चन बिभ्यति, वो किसी भी अवस्था से डरते नहीं है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, स्वर्ग हो अपवर्ग हो या मुक्त अवस्था हो, स्वर्ग हो या नरक हो, उनको एक ही मतलब है, अपितुल्यात दर्शनों को भगवान की सेवा से ही मतलब है, चाहे वो नरक में हो, चाहे वो मुक्त हो, चाहे वो स्वर्ग में हो, और किसी भी अवस्था से वो डरते नहीं है, क्योंकि जहां भी जाएंगे भगवान की भक्ति ही करेंगे। तो इस तरह से शिव जी कह रहे थे, देखो कितने महान है विष्णु के भक्त, वैष्णव कितने महान है। तो इसलिए शिव जी महान स्वयं, अब स्वयं महान भक्त हैं और दूसरे वैष्णवों की गुणगान करते रहते हैं। उसी तरह से जब प्रचेतों को वो उपदेश देते हैं श्रीमद् भागवत में, तो वो भगवान के भक्तों के संग का जो मूल्य है, जो कीमत है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। वो कहते हैं क्षण अर्धेन अपितुलय न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। वो कहने लगे कि भगवत भक्ति संगस्य, भगवान के भक्त जो है, इन भगवत भगवत संगी, जो लोग भगवान से संग कर रहे हैं यानी भगवान के भक्त हैं, इनका संग अगर हम करेंगे कितने समय के लिए, क्षण अर्धेन, आधे क्षण के लिए, आधे क्षण के लिए भी अगर हम ऐसे भगवान के भक्तों से संग करेंगे तो इसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। कैसे चीजों से नहीं की जा सकती, स्वर्ग, स्वर्ग की प्राप्ति से भी नहीं की जा सकती, न पुनर्भवन, भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन होने से भी नहीं की जा सकती। तो फिर मर्त्या नाम के मुताशिषः, तो ये भौतिक संसार के वरदानों का क्या फिर क्या प्रश्न है। इसीलिए भगवान शिव जी कहने लगे कि सबसे कीमती चीज भौतिक ब्रह्मांड में है भगवान के श्री हरि के भक्तों का संग। तो ऐसे वैष्णव ही बात कर सकता है, और कौन कह सकता है ऐसी बातें। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान शिव जी हमेशा वैष्णवों के गुणगान करते हैं और हर एक व्यक्ति को शिव भगवान श्री विष्णु के चरण में ले आना चाहते हैं। पद्म पुराण में भी शिव जी पार्वती माता को उपदेश देते हैं, क्या कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम तस्मात परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। वो कहते हैं कि हे देवी, आराधना, आराधना नाम सर्वेशम, सब आराधनाओं में से सबसे परम, सबसे ऊंचा कौन सा है, विष्णु आराधनम परम, लेकिन इससे भी ऊंचा क्या है, तदिया नाम समर्चनम, जो भगवान विष्णु से संबंधित हैं उनकी पूजा करना सबसे ऊंची पूजा है। तदिया नाम का मतलब है जो भी भगवान श्री विष्णु से संबंधित है, उनके भक्त, उनका नाम, उनकी लीलाएं इत्यादि, एनीथिंग इन रिलेशनशिप टू विष्णु। तो इसका मतलब है कि भगवान के भक्तों का सेवा करना, भगवान का नाम का उच्चारण करना, भगवान के नाम की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, श्रवण कीर्तन से। तो इस प्रकार से शिव जी कहते हैं कि विष्णु से जो भी संबंधित है वो सबसे ऊंचा है, ये है शिव जी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह से अलग अलग जगह शास्त्रों में वर्णन है कि किस तरह से शिव जी हर तरह से लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि वो विष्णु की भक्ति में आ जाए, और क्योंकि वो स्वयं सबसे ऊंचे महाजन हैं, लेकिन उनके जो भक्त हैं उनका क्या स्थान है, उनका स्थान है कि वास्तव में सब असुर होते हैं, जैसे पहले बताया। आप अगर विचार कीजिए थोड़ा कि भगवान या शिव जी के बड़े भक्त कौन हैं, कौन हुए हैं इतिहास में, थोड़ा नाम ले सकते हैं, रावण पहले नंबर पे, भस्मासुर, महिषासुर, सब शिव जी के भक्त हुए हैं, जरासंध कृष्ण लीला में, सब शिव जी के बड़े बड़े भक्त। और उनकी मेंटेलिटी क्या होती है कि हम शिव जी से वरदान प्राप्त करेंगे लेकिन हम शिव जी को इखाड़ बैठेंगे। ऐसे वृकासुर या भस्मासुर नाम के व्यक्ति थे, तो उन्होंने बहुत ही कड़ी तपस्या की, ऐसी तपस्या उन्होंने की, बहुत ही घोर भयंकर तपस्या। उन्होंने अपने शरीर का मांस वो काटने लगे और अग्नि में अर्पण करने लगे, और धीरे धीरे से उनके शरीर में प्राय जब मांस समाप्त होने को आया तो शिवजी सोच रहे थे कि ये अजीब मुसीबत है, कैसे कैसे भक्त मेरे हो जाते हैं, कैसे कैसे भक्तों का मुझे वरदान देना पड़ता है, ऐसे घोर तमोगुण की तपस्या कर रहे हैं ये। तो फिर वो मजबूरन उनको प्रकट होना पड़ा भस्मासुर के सामने। तो प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो भस्मासुर ने एक अद्भुत वरदान पूछा। कोई साधारण व्यक्ति होता तो पूछता कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे गाड़ी बंगले जो भी है कुछ चाहिए, लेकिन भस्मासुर ने पूछा कि मुझे ये वरदान आप दीजिए कि जिस व्यक्ति का सर मैं स्पर्श करता हूं उसका सर के चूर चूर हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो शिव जी फिर भी सोचने लगे, अरे ये कैसा वरदान मांग रहा है। शिव जी शर्मिंदा हो गए कि मेरे ऐसे भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो मजबूर हैं, तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो उस समय भस्मासुर ने क्या किया, वो शिव जी की ओर आगे बढ़ने लगे, चलो टेस्ट तो करें कि आपने जो किया है, जो वरदान दिया है, वो सही है कि नहीं है। जिस प्रकार से हम कोई दुकान से हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, टेप रिकॉर्डर, तो हम वहां टेस्ट कर लेते हैं, या गाड़ी टेस्ट कर लेते हैं ठीक है कि नहीं है, तो उसी प्रकार भस्मासुर भी टेस्ट करना चाहते थे कि क्या वरदान जो शिव जी ने दिया है वो सही है कि नहीं है। तो सोच रहे थे कि मैं शिव जी के सिर को स्पर्श करूंगा। तो शिव जी वहां से चलते बने, बहुत तेजी से चल बने वहां से, और चलते चलते और उनके पीछे पीछे भस्मासुर। और फिर उन्होंने विष्णु नारायण के पास गए और कहा कि देखिए अब मेरी ये परिस्थिति है, कुछ कीजिए अभी। तो विष्णु कहा चिंता नहीं करो। फिर भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और ब्राह्मण का वेश धारण करके वो भस्मासुर के सामने आए और कहा अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम इतनी जल्दी, हाथ ऐसे आगे सामने रखकर कहाँ जा रहे हो। तो कहा मैं तो शिव जी का पीछा कर रहा हूं उनका सर का स्पर्श करने के लिए, उन्होंने मुझे वरदान दिया है। तो ब्राह्मण हंसने लगा। तो भस्मासुर कहने लगा अरे तुम हंसने की क्या बात है इसमें। तो ब्राह्मण कहने लगा कि तुम वास्तव में विश्वास करते हो कि शिव जी ने जो वरदान दिया है वो काम करेगा। अरे देखो देखो मूर्ख ना बनो, आज तक शिव जी का वरदान एक भी अच्छा निकला नहीं है। वो वरदान देने में तो नंबर एक है लेकिन कोई भी वरदान निकलता ठीक नहीं है। तो आराम से करो, ऐसा मैं सजेस्ट करता हूं कि देखो परीक्षा ले लो, अपने हाथ पे हाथ रख लो, अपने सर पे हाथ रख लो और फिर देखो। तो माया शक्ति के प्रभाव से तो फिर विकासुर ने भस्मासुर ने अपने ही सर पे हाथ रख लिया और उसके सर के चूर चूर हो गए। तो इस प्रकार से अलग अलग जो भगवान के शिव जी के भक्त होते हैं वो उनकी भावना ऐसी असुरी प्रवृत्ति होती है उनकी। तो इस चर्चा खत्म हुई नहीं, और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें थोड़ी सी हैं, शायद दर्शन के बाद थोड़ी बातें सुनाएंगे। अब दर्शन होगा। तो श्री श्री राधा गोपीनाथ और आप सबके प्रसन्नता के लिए शिव जी की महानता के बारे में 5-10 मिनट और थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से शिव जी इतने महान वैष्णव हैं लेकिन उनके जो भक्त होते हैं आमतौर से देखा जाता है असुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो अगर ऐसा है तो शिव जी क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि महान वैष्णव होने के नाते वो बड़े कृपालु भी हैं। शिव जी के पार्षद कौन हैं? एसोसिएट्स, भूत, पिशाच, हर प्रकार के नीच योनि के जो प्राणी हैं वो शिव जी के साथ घूमते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं शिव जी? शिव जी उनको आश्रय देते हैं, विशेषतः जिन्होंने अपना स्थूल शरीर खो लिया है कोई पाप करने की वजह से, और जो भूत प्रेत की योनि में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, ऐसे लोगों के उद्धार के लिए शिव जी उनको आश्रय देते हैं ताकि धीरे 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 से वो आध्यात्मिक जीवन में वो प्रगति कर पाए। तो ये है शिव जी का स्थान। लेकिन ऐसे लोगों का संग करते हुए भी वो ऐसे संग से प्रभावित नहीं होते, वरन उनकी कृपा ऐसे भूत प्रेत पिशाचों को वो दे देते हैं। दो रविवार पहले आपने सुना कि किस प्रकार से शिव जी की कृपा से ऐसे भूत प्रेत पिशाच को एक शरीर मिल जाता है। जब गलत समय पे एक पुरुष और स्त्री का संग होता है तो उस समय ऐसे स्त्री के गर्भ में ये भूत और प्रेत और पिशाच को वहां शिव जी की कृपा से वो स्थान मिल जाता है। तो संतान उत्पत्ति के लिए भी सही समय होता है, सही जगह होता है, और उस आधार पर अगर करेंगे संस्कार सही संस्कार से तो अच्छे संतान की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन आजकल विशेषतः कलयुग में ये देखा जाता है कि लोगों को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ज्यादातर जनसंख्या सब नास्तिक है, इसलिए कोई संस्कार नहीं करते और सारे जो संतान जो उत्पन्न हो रहे हैं बचपन से ही बड़े असुरी प्रवृत्ति के होते हैं। तो शिव जी ऐसे सारे लोगों को आश्रय देते हैं, इसलिए उनका नाम है भूतनाथ, भूतों के नाथ है वो, और इसलिए सारे भूत उनके साथ घूमते फिरते हैं। तो यह है शिव जी की कृपा। वैष्णव होने के नाते उनमें यह अच्छा गुण है कि वो बड़े कृपालु हैं और वो ये नहीं देख पाते कि किसी दूसरे को कष्ट हो, पर दुख दुखी। इसलिए उन्होंने समुद्र मंथन के समय, जिसका वर्णन थोड़ी देर पहले आपने सुना, उस समय जब समुद्र मंथन करते समय कालाकूट विष निकला तो सारे देवतागण असुर सारे बड़े विचलित हो गए कि अभी ये जो कालकूट विष है सब जगह फैल रहा है। तो फिर शिव जी ने ये सारा जो समुद्र विष का समुद्र है उसको अपने हाथों में लिया और उसका पान किया, और वो विष उन्होंने अपने गले में धारण किया है, इसलिए उनका नाम है नीलकंठ। तो यह है शिव जी की कृपा। वो सोचते थे कि दूसरों को कष्ट न हो, दूसरों को कष्ट से बचाने के लिए मैं विष पीने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन उनको उनकी वो क्षमता है, उनकी वो योग्यता है, लेकिन उनके जो तथाकथित जो अनुयायी हैं वो शिव जी की नकल करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम भी होली के दिन या कोई भी दिन हम गांजा पियेंगे, भांग पियेंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ठीक है, अगर आपको भांग और चरस पीना है तो पियो, लेकिन उसके पहले आप विष भी धारण करो, विष भी पी लो। अगर आप शिव जी की तरह विष पियोगे तो फिर आप भांग जितना चाहे उतना पी लो। तो हम नकल नहीं कर सकते शिव जी की। शिव जी महान हस्ती हैं और सिर्फ अपनी कृपा को दर्शाने के लिए वो ऐसे कार्य करते हैं। और इसी तरह से उन्होंने गंगा जी को भी अपने सर में धारण किया। शिव शिव अभूत, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि शिव का मतलब है मंगल, मंगलमय जो भी वस्तु है उसको शिव कहा जाता है। तो भागवत में बताया है कि जब शिव जी ने गंगा जी को अपने सर में धारण किया उस समय वो और भी ज्यादा मंगलमय हो गया। He became even more auspicious. शिव जी उनका नाम ही है शिव, मंगलमय। लेकिन भगवान के चरण कमल से स्पर्श करते हुए जो जल है गंगा जी, जब उन्होंने अपने सर में धारण किया तो और भी सब कुछ मंगलमय हो गया। इसे और भी एक ये प्रमाण है कि शिव जी वास्तव में भगवान श्री हरि के एक महान भक्त हैं। तो इस तरह से ये इनकी कृपा है। और भक्त के जीवन में और एक भी लक्षण हम देख सकते हैं कि वह है वैराग्य। शिव जी जैसा वैराग्य शायद आज तक ना तो हुआ है ना तो होगा। केवल कृष्ण के अलावा ऐसा वैराग्य कोई भी नहीं दिखा पाएगा जैसा कि शिव जी ने दिखाया है। जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि शिव जी की पत्नी कौन है, दुर्गा देवी, माया देवी। अभी जनसाधारण सब दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, क्यों? मुझे हाथ बढ़ाकर पैसा चाहिए, घर चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छे पति चाहिए, शिक्षण चाहिए, फलाना 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 फलाना। तो शिव जी अगर चाहते तो अपनी पत्नी के माध्यम से सारी भौतिक सुविधाएं हासिल कर सकते हैं, उनको क्या मुश्किल है? आखिर वो दुर्गा देवी के स्वामी हैं। लेकिन शिव जी कहां रहते हैं? वो एक पेड़ के नीचे रहते हैं, ज्यादातर स्मशान भूमि में रहते हैं। उनमें उनके ऊपर कपड़े क्या होते हैं? कपड़े जो है, बताया जाता है कि जो स्मशान भूमि जो धूल उड़ती है, जो राख है, वो जो उनके शरीर पर लग जाती है तो वो उनके शरीर का वस्त्र है। उनके बाल में भी ये सब धूल है, उनके गले में हड्डियों की माला है, और यहां तक कि उनके पास एक घर भी नहीं है। वो दुर्गा देवी उनकी पत्नी है, लेकिन अपनी पत्नी के माध्यम से वो घर भी नहीं मानते। और दुर्गा देवी इतनी पतिव्रता है कि हालांकि वो बड़े राजा पर्वत या हिमालय के राजा की पुत्री है, राजकन्या है, फिर भी वो एक ऐसे गरीब अवस्था में रहती है, एक ऐसे व्यक्ति के पत्नी बनकर रहती हैं जो कि दुनिया के दृष्टि से भिखारी की तरह रहता है, और वो उनकी सेवा करती है अच्छी तरह से। पार्वती का मतलब है पर्वत की पुत्री, और भवानी, भवानी का मतलब है भव की पत्नी, भव यानी शिव। तो इस तरह से शिव जी अपने जीवन के उदाहरण से दिखाते हैं कि सच्चा वैराग्य क्या है। इसलिए शिव जी ऐसा जीवन बिताते हैं, एक उदाहरण दिखाने के लिए कि किस तरह से हम भी भौतिक जीवन से हम निरासक्त रहें, मटेरियल डिटैचमेंट आदर्श है। शिव जी भौतिक सृष्टि में वैराग्य कैसा होना चाहिए ये दिखाने के लिए वो आदर्श है। तो इस तरह से शिव जी अपने जीवन से कैसे नाना प्रकार के अच्छे अच्छे गुण प्रदर्शित करते हैं, और इस लेकिन फिर भी लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। शास्त्र में बताया जाता है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए, कि वैष्णव को पहचानना बहुत मुश्किल है। अक्सर इतिहास में देखा जाता है कि महान भक्तों को गलत समझा गया है, उसी प्रकार शिव जी को भी गलत समझते हैं लोग। थोड़े लोग समझते हैं ये तो भांग पीने वाला व्यक्ति है, थोड़े लोग समझते हैं ये तो स्मशान भूमि में रहने वाला व्यक्ति है। इस प्रकार से अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं रहती हैं। तो उसी प्रकार से दक्ष, उनके जो उनकी पत्नी थी, उनकी पुत्री थी सती, और सती से शिव जी ने विवाह किया था। तो दक्ष भी शिव जी से बहुत ईर्ष्या करते थे, और एक बार दक्ष ने एक सभा का आयोजन किया जिसमें सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया और सब लोग आए उस यज्ञ में और सब लोग वहां बैठे हुए थे और दक्ष ने सभा में प्रवेश किया। दक्ष के चेहरे पे बड़ा उजाला था, तेज था, क्योंकि वो महान प्रजापति है, लेकिन उनके अंदर बहुत गर्व अभिमान था। शिव जी और ब्रह्मा जी भी सभा में उस समय बैठे हुए थे। जब उन सब ने देखा कि दक्ष प्रवेश कर रहे हैं तो उनकी तेज को देखकर सब लोग बहुत प्रभावित हुए, सब लोग खड़े हो गए और उनको नम्रता से उन्होंने उनका स्वागत किया। केवल ब्रह्मा जी और शिव जी नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता हैं, तो जब ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो दक्ष ने कुछ बुरा नहीं माना। दक्ष ने देखा कि शिव जी जो मेरे दामाद हैं वो खड़े नहीं हो रहे हैं, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि सारे भरी सभा में, खुली सभा में उन्होंने शिव जी की निंदा करने लगे वो। और कैसे निंदा करने लगे, आइए थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। वो कहने लगे, हे उपस्थित मुनिगण, कृपया ध्यान से सुनिए। मैं जो भी कहने वाला हूं, मैं ना तो ईर्ष्या से कहने वाला हूं ना तो अज्ञान से। हालांकि वो ईर्ष्या से और अज्ञान से कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं ईर्ष्या से नहीं कह रहा हूं। तो सुनिए कि ये जो शिव है, इसने सारे ब्रह्मांड का नाम, ये जो ब्रह्मांड के देवताओं हैं इनका सारा नाम सब कुछ खत्म कर दिया है। और ये निर्लज्ज है, इसलिए उसे पता नहीं है कि किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। उसने मुझसे एक नीच श्रेणी स्वीकार कर ली है, क्योंकि उसने मेरी पुत्री से विवाह किया है और वो भी अग्नि और ब्राह्मणों के उपस्थिति में। और उस वो ढोंग कर रहा है कि मानो कि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है। उसकी आंख एक बंदर की आंख के जैसे हैं और उसने मेरी पुत्री से विवाह किया है जिसकी आंख एक हिरण के समान है। मेरे सुंदर पुत्री का विवाह इसने किया है और ऐसा व्यक्ति जब मैं प्रवेश कर रहा हूं वो मुझे स्वागत करने के लिए भी खड़ा नहीं रहता है। मुझे कोई इच्छा नहीं थी मेरी पुत्री को ऐसे व्यक्ति से विवाह कराने की, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर था, तो मैंने किसी न किसी तरह से दान दे दिया मेरी पुत्री का। जैसे कि एक व्यक्ति वेदों का जो संदेश है एक शूद्र को उपदेश देता है, न चाहते हुए भी कभी कभी देना पड़ता है। वो ऐसे गंदे जगह में रहता है जैसे कि स्मशान भूमि है और उसके दोस्त कौन है, सारे भूत प्रेत पिशाच। कभी कभी वस्त्र भी नहीं पहनता है और पागल आदमी जैसे यहां घूमता रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है और स्मशान भूमि के सारे जो राख है अपने शरीर पे लगाकर घूमता है। स्नान भी नहीं करता है और अपने गले में हड्डियों की माला पहनता है। तो इसलिए केवल नाम में ही इसका नाम शिव है, लेकिन वास्तव में ये तो पागल व्यक्ति है। सिर्फ ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने मेरी पुत्री को इसे विवाह कराया है। तो इस प्रकार से दक्ष कहने लगे, ईर्ष्या से पागल हो गए दक्ष, क्योंकि वो भी शिव जी को बाहरी दृष्टि से देख रहे थे और उस समय शिव जी के भक्त वहां उपस्थित थे, नंदीश्वर। तो नंदीश्वर को आया बड़ा क्रोध, तुरंत खड़े हो गए और वहां एक के बाद एक शाप देना चालू कर दिया सारे उपस्थित ब्राह्मणों को। और समय नहीं है, नहीं तो ये अलग अलग शाप का वर्णन भी बहुत ही श्रवण करने लायक है, लेकिन रात बीती जा रही है और इसलिए खैर। तो नंदीश्वर ने बहुत ही शाप दिए उपस्थित ब्राह्मणों को और फिर भृगु मुनि ब्राह्मणों की ओर से काउंटर कर्स करने लगे और वो भी शाप देने लगे और इस प्रकार से एक प्रतियोगिता होने लगी कि यहां से ये लोग शाप दे रहे हैं और फिर उसके बदले में वहां से शाप आ रहे हैं। तो बेचारे शिव जी वहां बड़े उदास हो गए कि ये क्या हो रहा है और वहां से चुपके से वो चले गए। और दूसरी बार जब दक्ष ने एक सभा का आयोजन किया यज्ञ का, तो जानबूझकर शिव जी को और सती को नहीं बुलाया। पर सती सोच रही थी कि सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहनकर जा रहे हैं सभा में और मैं भी मेरे पिता के घर में जाना चाहती हूँ, मेरी बहनों से मुलाकात करना चाहती हूँ। तो शिव जी के पास गई तो शिव जी ने कहा कि देखो, पिछली बार का अनुभव तो याद है, क्या हुआ पिछली बार, अभी वहां जाने से क्या फायदा, वहां तुम्हारे पिता जो है तुम्हारा सत्कार नहीं करेंगे, अगर अकेले भी जाओगे तो तुम्हारा आदर सत्कार नहीं होगा, तो फिर वहां जाने से क्या फायदा है। फिर भी सती जिद्दी थी कि मुझे जाना ही है। जब सती वहां गई तो सारे भूत प्रेत पिशाच सब उसके पीछे आने लगे, सब लोग वहां गए और वहां जाकर दक्ष ने उसकी ओर देखा भी नहीं, स्वागत भी नहीं किया। तो सती को बड़ा क्रोध आया और फिर वो बहुत ही क्रोध से अपने पिता की निंदा करने लगी। कि आप तो बिल्कुल अज्ञानी हैं, केवल आप ही सारे ब्रह्मांड में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हृदय में इतनी ईर्ष्या है कि आप शिव जी जैसे व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं जो कि वास्तव में शिव है, जो कि वास्तव में महान वैष्णव है, इनमें कोई बुरे गुण नहीं है, फिर भी आपकी ईर्ष्या की वजह से आपको इनके अंदर बुरे गुण दिख रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपकी पुत्री हूं, जब मेरे पति मुझे दाक्षायणी करके पुकारते हैं यानी दक्ष की पुत्री, मैं कान बंद कर लेती हूं कि मुझे सुनने के लिए शर्म आता है कि मैं आपसे मुझे शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे ये शरीर से संबंध तोड़ना चाहती हूं। और उस वक्त सती ने योगासन में बैठकर योग क्रियाओं से अपने शरीर को अग्नि से भस्म कर दिया। और उस समय जब यह खबर पहुंची शिवजी के पास, तो शिवजी ने बड़े क्रोध से एक बड़े से असुर को उत्पन्न किया जिसका नाम था वीरभद्र। और वीरभद्र और सारे जो भूत प्रशाच थे सब जाकर उन्होंने सारे यज्ञ स्थल को खत्म कर दिया, दक्ष को दक्ष का सर काट दिया और सारे वहां उपस्थित जो पुजारी वगैरह थे उनकी उनको भी खत्म कर दिया। भयंकर वहां पे सब कुछ नाश हो गया और उसके बाद में सारे देवतागण बड़े विचलित हो गए और शिवजी के पास गए और फिर शिवजी के पास उन्होंने क्षमा चाहा और फिर शिवजी ने आकर फिर सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। उस समय दक्ष को एक बकरी का सर मिल गया, क्योंकि सर तो चाहिए था कुछ, तो बकरी का सर मिल गया। और दक्ष को जब सर मिल गया तो उन्होंने फिर शिवजी से क्षमा चाहा कि मैंने आपको समझा नहीं ठीक से, और उस समय शिवजी ने पूरी तरह से क्षमा किया। जो शिवजी का क्रोध था वो भी एक वैष्णव का क्रोध था। वैष्णव को जब क्रोध आता है तो वो बदला लेने की दृष्टि से नहीं है, वो तमोगुण के प्रभाव से नहीं होता है। जैसे हनुमान ने जब क्रोध किया लंका पे रावण के ऊपर, सारे लंका को जला डाला, लेकिन वो रावण की भलाई के लिए था। तो उसी तरह से शिवजी ने क्रोध किया वो बदला लेने के लिए नहीं था, लेकिन दक्ष को और भी पाप करने से बचाने के लिए था, दक्ष की भलाई के लिए शिवजी ने क्रोध किया। तो जब दक्ष ने इस तरह से क्षमा चाहा तो शिवजी ने तुरंत क्षमा कर दिया। तो ये कहानी से हम क्या सीख सकते हैं कि दक्ष जैसे भी व्यक्ति प्रजापति वो भी शिव जी को नहीं समझते, तो आजकल के छोटे छोटे जो प्रजापति हैं वो क्या किस खेत की मूली है, है? तो इसलिए हमें शिव जी का क्या स्थान है वो अच्छी तरह से समझना चाहिए। और शिव जी वास्तव में एक आचार्य हैं, उनसे एक संप्रदाय शुरू होता है, वैष्णव संप्रदाय। चार वैष्णव संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय जिसमें हम लोग आते हैं गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, दूसरी है श्री संप्रदाय लक्ष्मी देवी से आती हुई, तीसरी है कुमार संप्रदाय और चौथा है शिव संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय शिव जी एक वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख हैं और जब भी भागवत में उपदेश देते हैं तो ऐसे उपदेश देते हैं कि सबको भगवान श्री विष्णु या श्री हरि के चरण कमल में ले आते हैं। जब उन्होंने प्रचेत को श्रीमद् भागवत में उपदेश दिया तो उन्होंने बहुत ही सुंदर गीत गाया जिसका नाम है रुद्र गीत। हर भक्त को यह रुद्र गीत सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवत में। इसमें शिव जी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं और श्री कृष्ण कितने महान हैं। काफी 30 श्लोक हैं इसमें रुद्र गीत। तो यो और तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो ये रुद्र गीत सुनता है हर रोज उसको जन्म मृत्यु के चक्कर से आसानी से छुटकारा मिल सकता है और भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो भगवान तो शिव जी ने कहा प्रचेतों से कि आप यही मंत्र यही रुद्र गीत आप कहते रहो, इसका उच्चारण करते रहो और बहुत ही जल्द आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और वास्तव में जब प्रचेतों ने ऐसा किया तो उनको भी भगवान की प्राप्ति हो गई। तो वास्तव में शिव जी महान वैष्णव हैं, आचार्य हैं, भगवान के गुणवतार हैं, उनकी महिमा उनकी गुणगान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए हम समाप्त करेंगे यहाँ। लेकिन एक आखिरी बात कहेंगे कि शिव जी का संबंध चैतन्य महाप्रभु से भी है। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में यात्रा के लिए गए थे तो लौटते वक्त उन्होंने श्री शैल क्षेत्र में शिव जी का दर्शन किया। श्री शैल क्षेत्र में शिव जी और दुर्गा देवी ब्राह्मण के वेश में वहां पे तपस्या कर रहे थे और जब शिव चैतन्य महाप्रभु आए 3 दिन वहां रहे और 3 दिन उन्होंने शिव जी के साथ बड़े गुह्य डिस्कशंस किए। क्या डिस्कशन किए वो वर्णन नहीं है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस उन्होंने किए शिव जी के साथ। और फिर शिव जी और दुर्गा देवी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया था इसलिए चैतन्य महाप्रभु को भिक्षा भी दी, दान भी दिया और फिर चैतन्य महाप्रभु वहां से चले। तो इस तरह से शिव जी आज शिवरात्रि के दिवस हमें शिव जी के चरण कमलों में चलना है, आश्रय लेना है, उनकी नकल नहीं करनी है, बल्कि समझना है कि शिव जी कितने महान हैं। महाजन येन गतः स पंथा, जिस प्रकार से महाजनों ने पथ हमें दिखलाया है, ऐसे पथ में हम चलेंगे, अवश्य हमारे जीवन की परिपूर्णता यानी कृष्ण भक्ति, जो कि जीवन की सबसे जीवन का सबसे ऊंचा ध्येय है, हमें अवश्य प्राप्त होगा। और भागवत में यह भी बताया जाता है कि शिव जी हमेशा ये महामंत्र का जाप करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिव जी के पद चिन्हों में चलकर अगर हम भी ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे और भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे, तो हमें भी ये कृष्ण भक्ति की अनमोल भेंट प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण, क्षमा चाहते हैं कि आपको इतना देर बिठाया, और बहुत कुछ कहने के लिए है शास्त्रों से, लेकिन और कभी अगर अवसर मिले तो कहेंगे। किसी का कोई प्रश्न वगैरह है? भी शिव जी का एक प्रतीक है, क्योंकि शिव जी ये भी बहुत एक डीप सब्जेक्ट है, शायद अभी समय नहीं रहेगा इसके लिए, लेकिन शिव जी वास्तव में नाश करने के या विनाश के एक यंत्र हैं, लेकिन वास्तव में सृजन के कार्य में भी शिव जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्रिएशन। तो क्रिएशन होता है प्रकृति से, प्रकृति स्त्रीलिंग है, प्रकृति है दुर्गा देवी, तो दुर्गा देवी के स्वामी है शिव जी, जो कि है पुलिंग, इसलिए वो लिंग का मैस्कुलिन जेनरेटिव ऑर्गन का वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ही इज अ क्रिएटर। तो शिव जी वो सारे सृष्टि के सृजन में भी मदद योगदान करते हैं। ब्रह्म संहिता अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें इसका काफी विस्तार में वर्णन है। और एक प्रश्न किसी का हो तो?
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे
Hare Krishna, Hare Krishna,
राम हरे राम।